الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم شکر احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا اور اس کے بعد عید الفطر عطا فرمایا، عید کی خوشیاں نصیب فرمائی. ہمارے پیارے شیخ عارف اللہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت عبدس معاشر حاکم مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنے ہوئے اور پڑھے ہوئے کچھ واقعات جو حضرت بار بار سنایا کرتے تھے رمضان شریف سے متعلق، اور تو دل چاہا کہ کچھ واقعات کا اعادہ کیا جائے جو رہ گئے. ایک حضرت سنایا کرتے تھے مثال دے کر کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آخری جمعہ آتا ہے رمضان شریف کا، آخری جمعہ تو اس کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع. حالانکہ اس وداع کی دین و شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. تو بعض لوگ اس کو جمعۃ الوداع وداع کرتے ہیں اور پھر ودا ودا کر کے روتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اگر ان کے رونے کو دیکھ کر کے جبرائیل علیہ السلام آ جائیں اور ان کے کان میں یہ کہیں کہ آپ زیادہ رونا روئیں، زیادہ افسوس نہ کریں، رمضان کے جانے کا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے روزے اور فرض کر دیے، تو ارے بھائی میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں سچ میں تھوڑی رو رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. تو ہم باتیں تھے کہ دیکھو بھائی، 1 مہینے فرض ہے، 1 مہینہ رکھا، شکر ادا کر لو. اور رکھتے ہو 29 رکھتے ہو اور ثواب پورے مہینے کا مل جاتا ہے. اللہ کی جو ہے عنایت ہے. کتنے ایسے ہیں جو نہ رکھنے کے جواز گھڑ لیتے ہیں. ابھی ہمارے کوئٹہ سے آتے ہیں حضرت مفتی محمد عبدالباری صاحب، بڑے جید عالم ہیں، تو یہی فرما رہے تھے کہ ابھی روزے شروع بھی نہیں ہوئے یا شروع ہو گئے، لوگ فدیے کی پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا فدیہ ادا کرنا پڑے گا. انہوں نے فرمایا ارے بھائی، فدیہ تو رمضان شریف گزر گیا، تم نے نہیں رکھا تب فدیہ ہے. وہ پہلے سے ہی فدیہ دینے دے کر جان چھڑانے کے لیے کہ مجھے تو یہ عذر ہے اور مجھے تو وہ ہے اور یہ ہے. تو فرماتے تھے کہ میرے پاس ایسے مسئلے بکثرت آتے ہیں کہ جہاں ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا جی، وہ فدیہ کتنا دینا ہمیں. حالانکہ انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ کوئی دیندار ڈاکٹر ہے نا، دیندار ہونا شرط ہے، وہ آپ کے سارے حالات کو دیکھ کر کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، اور پھر وہ تجویز کرے کہ آپ کے لیے روزہ ٹھیک نہیں ہے، تو جواز بنتا ہے. صرف اپنے تئیں سمجھ لینے سے تو یہ فرمایا کہ یہ وہی بات ہو جائے گی کہ جیسے وہ ایک مولوی صاحب پہنچے ایک گاؤں میں واعظ بیان کرتے ہوئے رمضان شریف سے پہلے، اور کہا بھائی دیکھو دوستو، ایک مہینہ آ رہا ہے اس کا نام ہے رمضان، اور اس میں اس طرح ہوتا ہے صبح سحر سے لے کر کے مغرب کے وقت تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں، اور یہ اس طرح سے 30 دن رکھنا ہوتا ہے اور اس پر یہ اجر ہے یہ ثواب. لوگوں نے مہینے کو تو غور سے سنا نہیں، رمضان کو سن لیا غور سے، سیدھے سادھے دیہاتی لوگ تھے، وہ بیان کر کے چل دیے. اب وہ دیہاتیوں نے کہا کہ بھائی یہ روزہ وہ تک کون رکھے، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا. تو چلو وہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ادھر سے آئے گا، وہ مغرب کی طرف شرک کے چلو سب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. وہ جب وہ پہنچے ادھر بستی کے باہر مغرب کی طرف तो देखते हैं कि एक ऊंट पर एक आदमी चला आ रहा है, ऊंट पर एक आदमी चला रहा है। जब करीब पहुंचा, पूछा आप कौन है? उसने कहा रमजान। उन्होंने कहा हाँ यही है वो, ना हो इसी को बोल के कहे मौलवी साहब रमजान। बस खूब कुटाई की उसकी, उठाई उठाई करके भाई खबरदार हमारे दाखला मना है तुम्हारा, तुम जैसे निकलो कहीं और जाओ। तो अब एक महीने बाद मौलवी साहब वापसी उधर से आए, हाँ भाई रोजे रखे आप लोगों ने? अरे साहब हमने रोजे को अपने यहां दाखिल होने नहीं दिया, रोजे कैसे, तो मार मूर के भगा दिया उनको। तो हजरत फरमाया कि देखो जवाब ढूंढने वाले वो ऐसे लचर जवाब ढूंढ लेते हैं, तो ऐसा ना करो। आप कहेंगे कि भाई रमजान तो गुजर गया, अभी भी रोजे का जिक्र हो रहा है, रमजान गुजर गया अभी भी रोजे का जिक्र हो रहा है, तो रोजे के असरात तो सारा साल रहने चाहिए ना भाई, पूरा साल रहना चाहिए। हमारे मुजद्दिद तबलीग हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कानदवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में बस्ती निजामुद्दीन के जो है करीब रहायश थी, मुजाहिदे का दौर था, तो हजरत का जो आबाई वतन है कांधला, तो कांधले में उनके एक चचाजाद या खालाजाद भाई, उन्होंने कहा कि भाई मौलवी साहब जो है वो दिल्ली के पीर हैं, दिल्ली के पीर हैं, बहुत लोग मुरीद हैं उनके, हदाया आते हैं, चले कुछ दिन चले उनके पास और दावत उड़ाएं कुछ, है ना, यहां तो सादा सूदी मिलता है, बस ये सोच के दिल्ली का सफर किया और पहुंच गए बस्ती निजामुद्दीन के पास। वहां आए, रिश्तेदार का वक्त हुआ, तो खादिम ने बदने में, बदना समझते हैं मट्टी के लोटे को, बदना कहते हैं उस जमाने में मट्टी के लोटे, बेर ले आए, ये गुलर रसगान बिछाया और लाके गुलर का वो बदना उलट दिया। हजरत ने भी वो गुलर नोश फरमाए, नमाज वमाज हो गई, अब उन्होंने कहा खाना वाना लगेगा, खाने का कोई जिक्र नहीं, रात हो गई, शहर आ गया। अब शहर के वक्त फिर दस्तखान बिछाया और खादिम आए, और खादिम ने आकर के बदना उलट दिया, फिर वही गुलर, रोटी चावल का, बिरयानी का, टिक्के का कोई नाम निशान नहीं। तो यार हम तो आए थे, हमारे कजन जो हैं ये तो दिल्ली के पीर हैं, यहां तो गुलर चल रहा है। खैर बादल ना खास्ता उसी से रोजा रख लिया। अब जो है दिन गुजरा किसी तरह से, अफ्तार का वक्त आया, फिर उसी तरह से गुलर। अब तो बड़े घबराए, यार भाई कहां फंस गया मैं, तीन टाइम हो चुका है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, अफ्तार के बाद इजाजत चाहिए, भाईजान इजाजत दे दीजिए, अब सर घर पे बच्चे बच्चे हैं उनको देखभाल करनी है। अगर समझ गए, अगर फरमाया नहीं आपको इजाजत नहीं, मुझे यार ये कहां फंस गया मैं, आपको इजाजत नहीं, अब इजाजत नहीं मिली तो अब कैसे जाएंगे, बैठ गए आप लेट गए अफसोस करते हुए। थोड़ी देर में एक ठेले की आवाज आई, जब ठेला करीब आया तो उस पर एक देग रखी हुई थी और जो है खुशबू आ रही थी। हजरत ने फरमाया आओ भाई आओ मुजफ्फर में, आओ मुजफ्फर नाम तकल, आओ मुजफ्फर में आ जाओ, आ जाओ, आ गया तुम्हारा, तुम्हारे लिए आ गया, आ जाओ तुम्हारे लिए आ गया। अब जो खोला तो वो बिरयानी की देग, मैं तुम्हारे लिए आया अब शाम में जा रहा है। तो हजरत शेख ने इसको वाकई लिखा और फरमाया कि देखो हमारे बुजुर्गों ने कैसे मुजाहिदात की, अल्लाह ताला ने फिर कैसी खुशबू फैलाई, कैसा चमकाया, भाई, वो तो गुलर खा खा कर रोजे रख रहे थे वहां। अपने गांव में कमी, घर में कमी नहीं थी खाने की पीने की, कांदला में जो आबाई वतन था कमी नहीं थी, लेकिन वहां पर दीन की शाद के लिए और दीन की तबलीग के लिए वहां बैठे थे, दोनों को दीन सिखाने के लिए। मेवात करीब था, मेवाती सारे हजरात वहां आते थे, ये जाते थे इनके वाली साहब के जमाने से। तो इस तरह से मुजाहदे भी किए, फिर अल्लाह ने फतुहात भी दी, और फिर एक वक्त आया कि फिर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया और कितना चमकाया है, लखोखा इंसान हिदायत याफ्ता हुए हजरत की मेहनत की बरकत से, अल्लाह ताला ने उसे काम लिया। काम लिया पे जब शौक हुआ हाजरी का आदर्शों की खिदमत में, हज पे तशरीफ ले गए, वहां से रोजे पे हाजिर हुए, तो एक रोज सुबह परेशान परेशान थे, तो मौलाना मोहम्मद इलियास, मौलाना मोहम्मद सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई मौलाना अहमद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह, ये दोनों भाई हजरत मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं दोनों, तो वो भी वहां साथ थे। मैंने पूछा कि आप कुछ परेशान हैं? कहा जी वो रात ख्वाब आया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया इलियास वापस जाओ, वापस हिंदुस्तान जाओ, हमें तुमसे कुछ काम लेना है। अब थे बहुत नहीं कमजोर, मुजाहिदात ने और लागर कर दिया था, तो कह मैं कमजोर सा आदमी और मैं क्या काम करूंगा। तो फरमाया उन्होंने कि क्या कहा गया, उनका काम लेना है। तो फरमाया कि भाई काम लेने का लेना है कहा गया ना, तो काम लेने वाला खुद ही ले लेगा काम, परेशान क्यों होते हो। वह दिल को ठंडक पड़ गई। अल्लाह ताला हमें अपने अकाबिर का फैज अता फरमाए, उनकी जो है पूरी पूरी बरकत अता फरमाए। ये वाकात अर्ज करने का मकसद यही है कि अकाबिर से मोहब्बत ताल्लुक ये आमाल की जान है। आमाल में मजबूती जो आती है वो अपने जैसे लोगों को देख करके आती है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंसानों में से बनाया गया है ना। नहीं तो कोई फरिश्ता आ जाता तो लोग कहते साहब ये तो फरिश्ते हैं, इनके लिए तो अमल करना आसान है, हमारे लिए कहाँ आसान है, हम कैसे अमल करें, तो ये तो फरिश्ते हैं ना। तो हर दौर में अल्लाह ताला ने अपने मकबूलीन सालिहीन का वजूद रखा है और मिसालें मौजूद हैं जो दूसरों के लिए मशाल राह होती है, नमूना होती है, कि जब ये इस जमाने में यही इन जैसे लोग हैं और वो दीन पर अमल कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, हराम से बच रहे हैं, ताअत पर हैं, मजबूत हैं, तो काबिल अमल है जब तो हैं, ये नमूने हैं, इनको देखकर तुम भी आओ, इनकी इबादत, इनकी ताअत, इनके अकायद, इनके अखलाक व मामलात, इनकी माशरत, हर चीज दीन के मुताबिक है, सुन्नत पर चलने की कोशिश है। एक इमामों में से तालिबान अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का वाकया नजर से गुजरा, तो फरमाया 40 साल में 40 साल तक भी रमला फौत नहीं हुई, कितने 40 साल तक भी फौत नहीं हुई, सिर्फ उस रोज जिस रोज उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक वक्त की तकबीरुल्ला निकल गई 40 साल। मेहनत करने वाले मौजूद हैं ना, जमात की नमाज आज हम कितनी आसानी से छोड़ देते हैं, सुस्ती में, कभी साहब सफर पर हैं, कहते हैं भाई हम घर पहुंचेंगे तो जाके पढ़ेंगे, बस पे हैं तो कहते हैं भाई छोड़ो आप घर में जाके पढ़ लें। बाज़े में से ऐसे भी हैं जो कजा कर देते हैं और कहते हैं कि बस घर जाके खट्टी पढ़ लेंगे, है ना, उनको इतना भी वो नहीं कि कजा हो रही है। एक तो होता है जमात का छूटना और एक वक्त का निकल करके कजा हो जाना। ऋषि में आता है कि मलकुल मौत, जहां बाजमात नमाज अदा करने वालों की टोह में रहते हैं, उनकी टोह में रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन आदमी मस्जिद पहुंच रहा है और बाजमात नमाज पढ़ रहा है, और जिसको पाबंद देखते हैं तो जब उसकी रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो लोग उसको चूंकि पहचानते हैं, चूंकि पहचानते हैं कि ये तो बाजमात मस्जिद में आने वाला है, तो उसको इंतकाल के वक्त खुद कलमे की तलकीन फरमाते हैं। इसलिए उसको शैतान पूरा जोर लगा रहा होता है, अल्लाह बचाए उस वक्त कड़े वक्त में आदर्श ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, या अल्लाह मौत की बेहोशियों में, मौत की सख्तियों में अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। उस वक्त कि जब शैतान भी जोर लगा रहा है और बेईमान करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि यह आदमी बेईमानों के जाए, उस वक्त ये उसको ईमान की तलकीन करते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं, इसको जिसको बाजमात नमाज का पाबंद देखते हैं वो लगाने में। तो दीगर फजाइल तो अपनी जगह, ये फजीलत मेरे शेख अव्वल हजरत अकदस मौलाना मोहम्मद यूसुफ दियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त इतकाफ से हम फारिग होते थे और अब घरों को जाने का आखिरी रोज है, तो कुछ नसीहतें फरमाते थे। उसमें से क्योंकि नौजवानों की कसरत होती थी, बड़ी तादाद नौजवानों की, आज भी आप देखें मस्जिदों में तो बड़ी तादाद नौजवानों की होती है, अजीब बात है, शौक होता है, सारा साल जो मस्जिद नहीं आते और वो इतकाफ के में पहुंच जाते हैं, आखिरी दस दिन जो है उसमें उनको एक यानी कहना चाहिए कि 75% मस्जिदों में नौजवान ही नजर आते हैं, है ना। तो हजरत के भी इसी तरह से, और हजरत की तो माशाल्लाह ऐसी तरतीब होती थी, बयानात होते थे और दीगर चीजें कि कितने दाढ़ी रखने का शौक लेके उठते थे, दाढ़ी रखने का अजम लेके उठते थे, आइंदा की जिंदगी को सही ढब पर लाने का अजम लेके उठते थे, सिर्फ 10 दिन ऐसे ही आके गुजार लिया और जो है मेरी किसी मकसद को लिए बगैर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, मकसद को लेके लौटते थे। हजरत की जो है लिल्लाहियत और अखलास और जो यानी अल्लाह ताला से मांगना होता था रो रो कर, तो उसका नतीजा होता था। तो चंद नसीहतें हजरत की बहुत खास होती थी, उसमें एक चीज फरमाते थे, देखो अगर तुम्हें मां बाप की फरमाबरदारी आ गई यहां से जाने के बाद, अब तक तुम नहीं फरमाबरदार थे, कुदाई करते थे, लेकिन फरमाबरदारी आ गई तो समझो तुम्हारा इतकाफ वसूल हो गया, कबूल हो गया। और एक बात फरमाते थे कि यहां से जाने के बाद 5 वक्त की नमाज बाजमात की पाबंदी आ गई तो तुम्हारा एतकाफ समझो के वसूल हो गया, कबूल हो गया। यही बात, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने का एहतमाम आ गया, बस ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए कि माह मुबारक में तो एक शौक, एक वलवला, एक माहौल, और वो इबलीस भी बंद होता है तो अमल कर लेते हैं, लेकिन जहां ईद हुई समझते हैं कि बस अब रमजान गया तो बस छुट्टी। आजकल अब लोगों ने इसको एक मैसेज बना के चलाया हुआ है और भेजे जा रहे हैं एक दूसरे को, है ना, तलाश गुमशुदा, कि मस्जिद से नमाजी भाग गए हैं और मस्जिद में उनकी तलाश हो रही है। वो तो अंदाज उनका बहरहाल मजाक का है और एक मजाक का है, लेकिन हकीकी बात भी यही है कि जो मस्जिदें आबाद थी वो हो गई सन्नाटा और ब्यामा। तो ये तो सारा साल इनको सारा साल आबाद रहना है इसी तरीके से। तो उसमें एक खास बात जो थी जो हजरत की वो ये थी कि ये कैसे हासिल होगा, ये कैसे हासिल होगा, हमारे कहते थे माहौल में जुड़ने से। जैसे आप 10 दिन यहां माहौल में रहे है ना, ख्यालात की पाकिजगी आमाल की मजबूती रही है ना, अब इसको दवाम चाहिए अगर तो इस माहौल में जुड़ते रहो, अपने आप को अवस्था रखो। इसलिए कि यहां से निकलोगे और शैतानी तागोती ताकतें तुम्हें खींचेंगी है ना, अब नूरानी और रूहानी ताकत भी तो कुछ खींचने वाला हो, शैतानी और तागोती ताकतें तो मौजूद हैं लेकिन नूरानी और रूहानी ये ताकत कहां से मिलेगी तुम्हें, तो ये इन सोबतों से मिलेगी, अल्लाह वालों से मिलेगी, उनके खादिमीन से मिलेगी। तो अगर इसमें दवाम चाहिए, इस्तकामत चाहिए, पुख्तगी चाहिए तो इस माहौल में अपने आप को अब इस पर रखें, उससे क्या होगा कि बाकी रहेगा और मजीद तरक्की भी होगी। ये तो चंद दिनों में वो आदमी नीचे आने लगता है, फिर वही एक साल गुजर जाता है, फिर रमजान आ गए, कहते अभी तो रमजान गए थे अभी आ गए, ऐसे क्या है हो रही है रफ्ता रफ्ता उम्र हो रही है रफ्ता रफ्ता मिसल बर्फ कम, बस वो कम हो रही है है ना, साल गिर गया। साल गिराने पर खुश होते हैं, साल गिरा हो गया, बड़ा हो गया बच्चा, हालांकि साल तो गिर गया है, कम हो गया, 20 साल का हो गया तो उसकी जिंदगी के 20 साल कम हो गए, 50 साल का हो गया तो अब कितने रह गए, खुशी का मुकाम नहीं है, रोने का मुकाम कम हो गया। किसी ने 25 रमजान देख लिए, किसी ने 50 देख लिए, किसी ने 60 देख लिए, तो उसके किस्मत में जितने रमजान थे उतने कम हो गए, अब चंद रह गए बाकी। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दोनों बताता हूँ कि शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब सुना करते थे कि एक मरतबा ये उमरे पे जा रहे थे, हजरत से मिले और गेट तक पहुंच गए दरवाजे तक, तो हजरत ने आवाज दी वापस बुलाया, फिर पूछा ये बताओ कि ये जो हाजिरी हो रही है तुम्हें तो मालूम है कि ये हाजिरी हरम की क्यों हो रही है, खामोश, क्या जवाब दे क्यों हो रही हाजिरी, उम्र के लिए हाजिरी हो रही खामोश, फरमाया कि ये हाजिरी इसलिए हो रही है कि पिछली हाजिरियों में जो कमी की उसकी तलाफी कर लो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उसकी तलाफी कर लो, ये बार बार का जो बुलाना है देखिए कैसा मुराकबा दी, कैसा मुराकबा दी अल्लाह वाले, एक आदमी एक अमल कर रहा होता है ना वो आदि हो जाता है, वो अमल कर रहा है ठीक है अमल तो कर रहा हूं आदि होगी, लेकिन एक ताकत नहीं दे दी, अब कैसे जज्बे के साथ, कैसे तड़प के साथ, कैसे इस्तेजार के साथ अमल करेगा आदमी, वो यही चीज कि आइंदा ना मालूम ये मिले कि ना मिले, ये जज्बा जब आ गया कि ये इस तरह कर लो कि आइंदा मिले कि ना मिले, हदीस में आता है कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हारी आखिरी नमाज। एक बुजुर्ग ऐसे शेख ने फजाइल अमाल में लिखा है कि वो नमाज से पढ़ते थे तो कहते थे मेरे सीधे हाथ पे जन्नत है, बाएं हाथ पे दोजख है, सामने अल्लाह ताला का दरबार है और पीछे मलकुल मौत खड़े हैं, कि मैंने नमाज खत्म की और उन्होंने रूह कब्ज कर ली। जिसको सुना रहे थे फरमाया मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूं। उन्होंने पूछा कि हजरत आप ऐसी नमाज कितने अर्से से पढ़ते, कमोबेश 30 साल से। उन्होंने हमें तो एक दिन भी ऐसी नमाज नहीं मिली, एक नमाज भी ऐसी नहीं मिली। अब बताइए वो कितने इत्मीनान से, कितने सुकून से, कितने खुशू से, कितने खुजू से पढ़ेगा नमाज, कि जिसको ये हो के पीछे फरिश्ता है मैंने खत्म की और उसने। तो यही तो फरमाया ना कि हर नमाज को ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हारी आखिरी नमाज। और वाकई देखें किसी को क्या मालूम है, कोई फजर पढ़ता है और जहर के दरमियान में उसका इंतकाल हो जाता है, कोई जहर पढ़ता है असर के माबैन इंतकाल हो जाता है। ऐसे ही पांच नमाजों के दरमियान ही मरता है ना कोई, इससे बाहर तो नहीं है। तो जो से नमाज पढ़ी गोया के आखिरी तो आखिरी तो हुई, बस इस पर मेहनत की जरूरत है। आज ज्यादा लंबी बात करने का की तबीयत नहीं है, बस अल्लाह ताला हमें जो रमजान में टूटी फूटी मेहनत हुई है अल्लाह ताला उसको बचाने की तौफीक अता फरमाए। नेकी को कहते हैं बचाना ज्यादा मुश्किल, कर लेना तो फिर भी आसान है, उसको बचाना ज्यादा मुश्किल है। वो यही है कि अब जो कुछ कमाया, जो रूहानियत में तरक्की हुई है ना, तरक्की तो हुई, या अमाल किए, रोजा रखा, प्यास बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त किया, हवा कमजोर हुए, तो लामहाला रूहानियत के अंदर तरक्की हुई, हमें नजर आया नहीं आए। जैसे गिजा हम लेते हैं तो हमें तो नहीं पता चलता कि इस गिजा का कौन सा हिस्सा, उससे आंख की रोशनी बढ़ी, इस गिजा के किस हिस्से से कान की समात में इजाफा हुआ, इस गिजा के कौन से हिस्से से हाथ में ताकत आई। लेकिन जांचना है अगर तो गिजा लेना छोड़ दो। एक वक्त गिजा न ली जाए तो शाम तक कमजोरी शुरू हो जाएगी। बस ये जांच है उसकी, समझ में आ गया कि गिजा ली तो ये आजा में ताकत आई अल्लाह के हुक्म से और ये काम कर रहे हैं, और नहीं ली तो उसमें कमजोरी आ गई। तो भाई नहीं, रूहानियत तो आई इन अमाल को करने से, हमें उसका इदराक नहीं है। लेकिन एक महीना अल्लाह ने अता फरमाया, इसमें रूहानियत में इजाफा हुआ, अब उसको बचाना ये है। और वही है, जबान बंद, कान बंद, आंख बंद, हाथ बंद, क्या होगा फिर? पांचवी चीज जो खुलेगी वो दिल खुलेगी। भाई पांच चीजें बंद कर लो, छूने की इसको बंद कर लो, देखने को बंद कर लो, सुनने को बंद कर लो, बोलने को बंद कर लो। क्या किस चीज से? गलत बोलने से। सही नहीं, ये मतलब नहीं कि तुम तो आपने इतना बंद कर दो नमाज नहीं पढ़ता, उसमें तो पढ़ना पड़ता है। गलत बोलने से, गलत सुनने से, गलत देखने से, तो क्या होगा? कल की आंख खुल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सकामत नसीब फरमाए और मजीद तरक्यात अता फरमाए। शैतान नफ्स के शुरू से अल्लाह ताला खास हिफाजत फरमाए। يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله ہم سب کی بخشش فرما دیجئے یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں سراپا گناہگار ہیں اللہ سراپا سیاہ کا یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کامل ہدایت دے دیجئے کامل اصلاح فرما دیجئے موت سے پہلے پہلے راضی ہو جائیے اپنی رضا اپنی محبت نصیب فرما دیجیے دنیا اور آخرت کی تمام خیریں برکتیں بھلائیاں عافیتیں ہم سب کو نصیب فرما, دنیا اور آخرت کے تمام فتنے شرور سے حفاظت فرما, موجودہ اور آئندہ آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما, ہماری ہمارے آل اولاد کی, ہمارے احباب کی, مسلم کی امت کی جان و مال زندہ و ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری عمر برکت فرمائیے, ہمارے مال برکت فرمائیے, ہمارے آل اولاد برکت فرمائیے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما دیجیے, صحت عطا فرما دیجیے, تندرستی عطا فرما دیجیے, قوت عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو تیرے ایمان دنیا فانی سے چلے گئے, اللہ یا اللہ اپنے کرم سے سب کی بخشش فرما, اللہ سب کی بخشش فرما, سب کی بخشش فرما, درجات عالیہ عطا فرما, پوری امت کی جان و مال زندہ و ایمان و اعمال کی حفاظت فرما, دینی جماعتیں, دینی شخصیتیں, دینی انجمنیں اللہ سب کے کام برکت عطا فرما, ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ حفاظت فرما دیجیے, یا اللہ حفاظت فرما دیجیے, کفار و مشرکین کو بھی ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ انہیں ان کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ نصرت فرمائیے. یا اللہ خاص مدد فرما دیجیے. یا اللہ عافیت فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کچھ خیر میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. رحمۃ اللہ.